نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 31 سے 39 تک کریں گے، سورۃ البقرہ. دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا پچھلی دفعہ. ہم نے بات کی تھی بہت امپورٹنٹ ایک بات، کہ ہم نے حیا نہیں کرنی جب کوئی حق بات کہنی ہو، اور ہمارے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جس کے اندر ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس میں اس وقت یہ نہیں کہنا مجھے شرم بہت آتی ہے بولتے ہوئے، اس وقت وہ بات کو کہنا ہے. یو دلو بھی کثیر و یہدی بھی کثیر، ابھی ہم نے سمجھا کہ اسی قرآن سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں. اور واقعی اسی قرآن کو اس نیت سے اگر پڑھیں گے کہ اس میں سے کوئی ہم نے شوشے ہی نکالنے ہیں، تو پھر ویسی ہی چیز نکلے گی، ان کو ملے گی. تو یو دل بھی اس سے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں ہدایت کا تو پتہ تھا، ہمیں گمراہی کا نہیں پتہ تھا. آپ دیکھیں، بعض دفعہ پڑھ کے سارا قرآن، سمجھ کے سارا قرآن، پھر اس کے بعد دماغ اتنا یعنی آسمان پہ چڑھ جانا کہ اس کے بعد انسان کسی سے بات کرنا پسند نہ کرے، یا پھر انسان ایسا ہو جائے کہ کوئی بات کسی کی سننا نہ چاہے. تو اسی قرآن سے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پاتے، دل نرم ہوتے، الٹا ہی کیا ہو جاتا ہے. انسان کس راستے پر چل پڑتا ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور الٹا بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا بہت امپورٹنٹ چیز، جس کے بہت سے سوال بھی ای میل میں آئے ہیں میرے پاس، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے یہ کہ جوڑا جائے، ملایا جائے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا رشتہ داری کو ملانے کا، اتنا نہیں مجھے پتا تھا، اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے کہ رشتہ داری ہم کیسے ملا لیں. یہ تو جیسے بہت بڑی ایک ڈیمانڈ ان سے کر دی گئی ہے. حالانکہ یہاں پہ دیکھیں، یہ میری بات نہیں ہے. یا ذرا غور سے پڑھیں، کس کی بات ہے یہ، کس کا حکم ہے؟ ما امر اللہ، جو حکم دیا اس کا اللہ نے، اللہ کا حکم ہے یہ. تو یہ تو کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ سے، تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو اس کو کاٹے گا، پھر وہ اللہ کے حکم کو کاٹ رہا ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. دوسرا، ہمیں تھوڑا سا صلہ رحمی کے بارے میں سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ ہے کیا. صلہ رحمی یہ نہیں کہ آل دا ٹائم آپ کسی کے گھر گھسے رہیں، یا وہ آپ کے گھر گھسے رہیں، یا ہر روز آپ ان کو فون کر رہے ہیں، یا وہ آپ کو فون کر رہے ہیں، اور چار دن نہ بات ہوئی تو پھر بس موڈ بن گئے. یہ نہیں ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ کہ انسان دوسرے کے ساتھ کٹ آف نہ کرے. جب اس کے لیے دکھ سکھ کا موقع ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، جب اس کو ضرورت ہو تو اپنی طور پہ پوری کوشش کرے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، دوسرے کا خیال رکھے، اس کی خیر خبر لیے رکھے. جب کاٹ ہی دینا تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کی کیا خیر خبر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں فلاں وہ بیوہ ہو گئی، فلاں وہ. تو اچھا، ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی اچھا پھر ان کا کیسے گزارا چلتا، کہتے پتہ نہیں چلتا ہوگا، کس طرح بڑا مشکل ہے ویسے. تو اس کا مطلب آپ نے نہیں خیر خبر لی، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر ایک خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں، سب کے خاندانوں میں، جو ضرورت مند بھی ہوتی ہیں، جو سب کے سبھی لوگ تو ایسے نہیں ہوتے کہ بہت ویل ٹو ڈو ہوں. کہیں نہ کہیں خاندانوں میں، ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ضرورت مند، لیکن ہم اس کی خیر خبر رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس کی ضرورت کیا ہے. تو بعض دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ناراضگی ہے، لیکن ویسے ہی کبھی بودر ہی نہیں کرتے. ہمیں کیا، ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں کوئی ضرورت تھوڑی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تعلقات جوڑنے ضرورت کے لیے نہیں ہے کہ اب ضرورت ہوگی کسی سے. اگر آپ نے اپنی ضرورت کے لیے کسی سے تعلقات جوڑے، تو وہ پھر کیا اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا. वो तो आपकी अपनी गर्ज है ना उसमें, आपको किसी से काम है, वो बड़े बड़े ओहदे पे हैं इस वक्त, आप उनके घर मिठाइयां लेके जा रहे हैं, वो जरा नाराज हो जाएं तो आप उनकी खुशामदे करके उनको पैर पकड़ के भी मना रहे हैं क्योंकि आपकी गर्ज है। लेकिन जहां पे अपनी गर्ज नहीं है, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, वहां पे बड़ा मुश्किल है। तो कितने पापड़ बेलते हैं हम, जब हमें किसी से काम होता है तो फिर चाहे सर नीचे पैर ऊपर करने पड़े, कैसे करते हैं लोगों के आगे, कैसे मिनमिनाते हैं और किस तरह से उनकी बुरी बात को भी बर्दाश्त कर लेते। लेकिन जब क्या अल्लाह का हुक्म आए तब नहीं हम बर्दाश्त करते। तो इसलिए इसको ये समझना है कि हमने उनकी खैर खैरियत रखनी है, हमने उनके साथ जोड़े रखना है, ताल्लुक काटने नहीं है कि अरसा अरसा गुजर जाए हमें पता ही नहीं है। वैसे नाराजगी तो कोई नहीं, लेकिन नाराजगी नहीं है तो फिर भी खैर खबर दूसरे की होनी चाहिए कि क्या उनके हालात हैं, कैसे उनका गुजारा हो रहा है। क्योंकि जाहिरी तौर पे देख के तो इतना मुश्किल है, लेकिन हमें क्या, हम अपनी जिंदगी में मगन। तो ये एक मामला है। दूसरे ये कि जहां पर ऐसी रिश्तेदारियां हों कि जहां पे बच्चों की शादियां भी की हुई है मसलन, और वहां पे शादियों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रिश्तेदारियां भी कट जाती है। मसलन दो बहनों की बच्चों की आपस में शादी हुई, नहीं बनी आपस के अंदर, तो उनके भी ताल्लुक खत्म हो गए, अब हमेशा के लिए खत्म है। अब बस ना किसी ने दूसरे का मुंह देखना है, ना किसी से बात करनी है, ना कुछ है। जो होना था वो तो हो गया, वो तो जो जैसा तकदीर में ऐसा ही लिखा था। लेकिन एक और बड़ा गुनाह जो हो गया, कबीरा गुनाह हो गया, वो ये है कि ताल्लुक काट दिया, जो नहीं काटा जा सकता। और हम सिर्फ खुद नहीं काटते, फिर हम औरों को भी कहते हैं खबरदार तुमने भी उससे बात की तो, अगर उससे बात करनी है तो फिर मेरे साथ तुम्हारा खत्म है। हम तो आगे से आगे करते हैं, इवन कुछ पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं ये वो तुम्हारी फलां जो है वो मेरे से नहीं बोलती, वो तुम्हारी पप्पी मेरे साथ ऐसे करती है, तुम्हारी क्या मिजाल है कि तुम उनके घर जाओ। तो ये नहीं कर सकते। इसी तरह बाज माएं बच्चों को बाप के खिलाफ कर देती हैं, बाज बाप माओं के खिलाफ कर देते हैं। तो इस तरह के भी वाकयात होते हैं, क्योंकि ये रिश्ते हैं और इनको निभाना और इनके जो हकूक हैं वो अल्लाह ने रखे हैं। अगर हमारा किसी ससुराल वाले के साथ नहीं बनता तो हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते, उनकी रिश्तेदारी है। तो ये है यकता मा अमर अल्लाह भी अन युसला, कि इसको सीरियस लेना है, ये मामूली बात नहीं है। फिर उसी बात हमने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला के एहसानात हैं जो हमारे ऊपर, उसके बाद हम सर उठाने के काबिल नहीं है। मुख्तसिर सी दो आयात में अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कि इसके बाद क्या तुम कुछ कह सकते हो। और फिर हमने इंसान की कहानी कहाँ से शुरू हुई वो देखा, कि जब हम में से कोई भी नहीं था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या आसमानों के ऊपर फैसला जब किया तो क्या किया, और आगे से क्या रिएक्शन था, और फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या जवाब दिया। आज हम देखेंगे कि जब फिर पहले इंसान को पैदा कर दिया गया तो फिर क्या हुआ। आपको पता है ये सब बातें गैब की बातें हैं, हमें ना हम थे ना हम, हमारी कोई साइंस या कोई कोई एस्ट्रोनॉमी कोई फलां कोई चीज हमें इस बारे में इल्म दे ही नहीं सकती। यहाँ पे इंसान का इल्म खत्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह ने वही के जरिए इल्म दिया है, सिर्फ हमें उसके ऊपर ही ईमान रखना है, उसको मानना है, क्योंकि वही सच बात है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और सिखा दिए आदम अलैहि सलाम को नाम सारे के सारे। अब जब अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया तो फ़ालुन लिमा युरीद, वो जो चाहे करे। आप देखें अल्लाह का जो फैसला है, आगे से फरिश्तों ने, याद रखें, एतराज नहीं किया था, बल्कि फरिश्तों के तो एक कंफ्यूजन थी कि ये कैसी मखलूक होगी, ये तो बड़ा खून बहाएगी, ये ऐसे करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया था कि खलीफा है। और खलीफा का आपको पता है ना, वो वाला खलीफा तो नहीं है जो दुनिया में खुलफाए राशिदीन या जैसे खलीफा हम कहते हैं खिलाफत बात करते हैं, वैसे तो नहीं, लेकिन खलीफा जो होता है बाय इख्तियार होता है ना, उसके पास चॉइस होती है, उसके पास पावर होती है, पावरफुल आदमी होता है ना। तो यहाँ पे इस लफ्ज से ही फरिश्ते समझ गए थे कि इसके पास इख्तियार होगा, पावर होगी, तो ये करेगा क्या, ये उन्होंने सोचा। तो जब अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि उनको जो पैदा किया तो उनकी मट्टी डिफरेंट जगहों से ली गई दुनिया में, यानी डिफरेंट दुनिया के खित्तों से उनकी मट्टी ली गई और उनसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, ताकि उनकी औलाद में हर तरह की खूबियों को, देखिए कोई मट्टी नरम होती है, कोई सख्त होती है, कोई स्याह होती है, कोई कैसी होती है, तो मट्टियों की भी किस्में है ना। तो इंसानों में भी कोई नरम होगा, कोई सख्त होगा, कोई अच्छी तबीयत का होगा, कोई कैसी तबीयत का होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई दरमियान में होगा, ठीक है। और जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, तो एक और बात भी आती है, दामा बगवी लिखते हैं अपनी तफसीर में कि फरिश्तों ने आपस में चर्चा किया कि अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करे, लेकिन जिसको भी पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा बढ़ के कोई बुजुर्ग मखलूक नहीं हो सकती, और अगर हमसे ज्यादा बुजुर्गी वाली कोई मखलूक हो भी गई तो इल्म में हमसे ज्यादा फिर भी नहीं होगी, क्योंकि हम उनसे पहले के पैदा हुए होंगे और हुए हैं, और हम तो बड़ा कुछ हमने देखा हुआ, तो ऐसी तो कोई मखलूक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दी। कौन सा दिन था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे? जुमा का दिन, बेहतरीन दिन हदीस में आता है, जुमे का दिन है। इसी दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में दाखिल फरमाया और इसी दिन उनको जन्नत से निकाला। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम सिखा दिए। कैसे सिखाए होंगे अल्लाह ने आदम को नाम? ये भी हो सकता है कि चीजों को उनके सामने जाहिर किया हो और उनको उनका नाम बताया हो। अच्छा, नाम बताने से हम सोचते हैं ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, किसी चीज का कोई भी नाम हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं है, बात ये, यानी नाम से मतलब है कि उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो भी बता दी। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी है, पानी जो है वो ऐसी चीज होती है, यानी लिक्विड चीज होती है, इससे प्यास बुझती है, ये काम करता है, इसमें ये खसूसियात है, ये सब चीजें। और फिर फरमाया अस्मा अब कुल्लाहा, सबके सब। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर इल्म और हर चीज और आसमानों और सितारों और दुनिया के जितने काम होने वाले हैं और होने नहीं वाले, उस सब बता दें उनको, ऐसा नहीं है। उल्लाह से मतलब सबके सब, जैसे मैंने आम कहे मैंने सब काम कर लिए, सब का मतलब क्या दुनिया के सारे ही काम कर लिए? नहीं, जो रिलेटेड है उनसे, यानी हर चीज की एक वैरायटी उनको जो उसकी थी ना, मतलब जो भी चीजें थी उनकी एक बेसिक चीज, बेसिक नॉलेज उनको दे दिया गया जो उनसे मुतालिक थी। तो हर वैरायटी की चीजों के बारे में बता दिया गया और क्या क्या सिखा दिया गया। आता है तफासीर में कि उनकी तमाम औलाद के बारे में उनको बता दिया गया, आपके ये बच्चे हैं, आपकी ये जुर्रियत आपकी आनी है, सब के नाम बता दिए गए, ये ऐसे ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, फिर जानवरों के, फिर जमीन आसमान पहाड़ तरी खुश्की घोड़ा गधा बर्तन चरिंद परिंद सितारों का फरिश्तों का, तो ऐसी छोटी बड़ी सारी चीजों के नाम उनको मालूम करा दिए गए। और ये यहाँ पे, अच्छा आगे आता है तो मैं आपको बताती हूँ, फिर एक एक लफ्ज को लेकर चलते हैं। थुम्मा फिर क्या किया गया? अब आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने सबसे पहला ऑनर, पहला अगर आपसे पूछा जाए पहला ऑनर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया था, तो ये नहीं है पहला ऑनर कि फरिश्तों ने उनको सजदा किया। पहला ऑनर अल्लाह ने उनको क्या दिया कि अल्लाह ने उनको इल्म दिया। इससे इल्म की फजीलत पता चलती है, और इल्म क्या होता है? किसी चीज की हकीकत को जानना। तो इल्म क्या अल्लाह ने सिर्फ उनको दीन का दिया था? नहीं, तमाम उलूम सिखा दिए थे ना, जो नफामंद उलूम है वो सिखा दिए। तो एक मुसलमान के लिए भी उसको चाहिए कि जो भी नफामंद इल्म है वो हासिल करे। दीन का इल्म तो बेस है, वो तो बेसिक चीज है, वो तो करना ही करना है। लेकिन हमारा दीन हमें ये नहीं कहता कि इसके अलावा आपने कोई इल्म हासिल ही नहीं करना, वो सब दुनिया की चीजें हैं, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया में नहीं पढ़ो, ना साइंस पढ़ सकते हो, ना मैथ पढ़ सकते हो, ना कोई और चीज पढ़ सकते हो, बस आपने आप दुनिया के पीछे लग गए हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ये उलूम भी अल्लाह ताला ने वदियत किए हैं। देखिए, जो आदम अलैहि सलाम को इल्म दिया था ना, उसी से ये आगे समझ लें कि, यानी एक समझ लें बीज था वो, ठीक है, उसी से आगे ये इल्म स्प्रेड हुए, क्योंकि वो बीज आदम अलैहि सलाम के अंदर डाल दिया गया था, उसी से आज इंसान फिर ये इन्वेंशंस करता है, कोई कोई चीज निकाल रहा है, कोई कोई चीज बना रहा है, उस इल्म की, जो उस इल्म की बदौलत है जो आदम अलैहि सलाम में डाला गया। तो उनको सब साइंस के, ये इसके उलूम उनके अंदर, और क्या कहा जाता है, जुबाने तक भी उनको बता दी गई थी सारी। तो ये बीज इन सारे उलूम का, इन सब सब्जेक्ट्स का डाला हुआ था आदम अलैहि सलाम ने, तभी इंसान आगे आगे एक्सप्लोर करता है, और फिर वो ही उलूम है जो आगे फिर बढ़ते हैं। तो इसमें फिर कोई हर्ज नहीं है कि अगर इंसान दीगर उलूम भी जो नफा मंद उलूम है वो हासिल करे, ठीक है, जो उसकी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, वो उलूम को इंसानों ने नहीं पैदा किए हुए, वो उलूम भी अल्लाह ही की तरफ से है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे उनको सिखाए, चरिंद परिंद के इल्म है, इंसानों का इल्म है, पहाड़ों का, खुशकी का, आज यही उलूम है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप देखें यही है, जो जूलॉजी है, कहीं बॉटनी है, कहीं मैथ है, कहीं अकाउंटिंग है, कहीं ये है, ये सब चीजें हैं ना इसके अंदर, कहीं सितारों का इल्म उनको दिया, तो आज इंसान कहाँ तक, क्या क्या टेलीस्कोप से इजाद किए हैं, और के कहाँ तक देख रहा है, और कायनात में और चीजें एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये उलूम अल्लाह ने सिखाए थे, तो इनको ये कह के नहीं हकीर कर देना चाहिए कि नो, ये तो दुनिया का इल्म है, तुम तो दुनिया में पढ़ गए। नहीं, इनसे भी अल्लाह को पहचानो, और ये सोचो कि ये अल्लाह ने ही उलूम दिए। तो अच्छा, ये हमें बात पता चल गई, आगे देखते हैं। सुम्मा फिर आरादाहुम आलल मलाइकती, फिर पेश किया उनको, किन को, आदम अलैहि सलाम को, या उन चीजों को, पेश नहीं, हुम का मतलब नहीं, ये नहीं लिखे आदम अलैहि सलाम, उन चीजों को जिन चीजों का भी इल्म दिया था, आलल मलाइकती, मलाइका पर, यानी मलाइका के सामने वो सारी चीजें पेश की, मसलन है कि जो इंसानों की रूहें थी, या वो अच्छा, ये भी एक बड़ी मजे की बात आती है कि आदम अलैहि सलाम की पुश्त से अल्लाह ताला ने रूहें निकाली ना, जितनी भी हम सारे जो कयामत तक जितने इंसान आने हैं उन सब की रूहें निकाली, और आदम अलैह सलाम देखा उन्होंने तो हैरान हो गए, उनको क्या पता कि ये क्या चीजें हैं, पूछा या अल्लाह ये कौन है, तो उनको बताया गया ये आपकी जुर्रियत है। अब आदम अलैह सलाम ने देखा तो सबके चेहरे जो थे ना, आंखों के दरमियान उनके एक नूर था, नूर था, सबके चेहरे रोशन थे। तो आदम अलैह सलाम ने सब पे जब नजर डाली तो एक बहुत रोशन पेशानी वाले थे, जो आदम अलैहि सलाम को बड़े पसंद आए अपनी औलाद में से। आप सोचें कि हम सब भी वहीं खड़े होंगे, है ना, रूहों की शक्ल में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम ने बता दिया, हदीस आ गई, तो फिर हम भी ईमान रखते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ। तो पूछा कि या रब ये कौन है, फरमाया ये आपकी जुर्रियत में दाऊद है, दाऊद अलैहि सलाम। तो उनको इतने अच्छे लगे, पूछा या अल्लाह इनकी उम्र कितनी है, बताया कि इनकी उम्र 60 साल है। तो फरमाया या अल्लाह मेरी उम्र में से 40 साल इनको दे दे, तो फिर 40 साल दाऊद अलैहि सलाम को दे दिए। जब आदम अलैहि सलाम की वफात का वक्त आया, तो फरिश्ता जब आया तो आदम अलैहि सलाम ने कहा अभी तो मेरे 40 साल और रहते हैं, तो उनसे कहा गया नहीं आपने तो अपने बेटे दाऊद को दे दिए वे। तो आदम अलैहि सलाम भूल गए थे, इंसान भूलता है, आदम भूले, उनकी औलाद भी भूलती है, किसी को दे के भी भूल जाते हैं कि हमने तो ये चीज दे दी भी है किसी को। तो फिर ये सब जो है, ये रूहें या ये सब चीजें जो थी, ये उनके सामने भी पेश की गई, फरिश्तों के सामने, और अल्लाह ताला ने उनको क्या फरमाया, फकाला, फिर फरमाया अम्बिउनी, मुझे बताओ भी अस्माई हाउलाई, नाम इन सब के, इन सब के नाम तो मुझे बताओ, जो तुम कह रहे थे तुम लोगों को बड़ा इल्म है या ये, तो तुम इनके नाम बताओ। इन कुंतुम सौदिकीन, अगर हो तुम सच्चे, सच्चे किस बात में सच्चे हो कि ये तो बस खून बहाएगा, फसाद करेगा, ये करेगा, और यानी इसमें तो कोई खैर खूबी है ही नहीं है। तो अगर तुम सच्चे हो, यानी तुम अपनी तुम इस बात में सच्चे हो, किस बात में कि सारी मखलूक से ज्यादा इल्म वाले हो, या इस बात में सच्चे हो कि अल्लाह ताला को जमीन में खलीफा बनाने की क्या जरूरत है, हम जो हैं इबादत करने के लिए, और या ये खून बहाएगा, फसाद करेगा, तो जो भी उनकी बातें थी, जो उनकी सोच थी, उसको सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बताओ फिर इनके नाम बताओ ना, अगर तुम सच्चे हो, तुम ये जो समझते थे तुम्हारी बात सच है तो बताओ, अब चीजें तुम्हारे सामने हैं, ठीक है। कालू, उन्होंने कहा, अब फरिश्ते तो ये नहीं जानते थे इन चीजों के बारे में कि ये क्या चीजें हैं, और फरिश्तों को तो सिर्फ तस्बीह करनी आती है, तकदीस बयान करनी आती है, इल्म वगैरह ऐसी चीजें तो, और इन चीजों का इल्म तो उनके पास नहीं था, ठीक है। तो इल्म की तो बहुत बड़ी फजीलत है, और ये उलूम फरिश्ते इनसे वाकिफ ही नहीं थे। फरमाया फरिश्तों ने, सुबहानका, पाक है तू, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, नहीं कोई इल्म हमारे लिए, यानी हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो सिखा दिया तूने, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू तू इल्म वाला है और हिकमत वाला है। अब फरिश्तों ने इतना प्यारा जवाब दिया, इस जो सवाल उनसे किया गया, इसके जवाब में उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की। सबसे पहली बात उन्होंने क्या की, अल्लाह की पाकी बयान की, जैसे हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह वहां पे, अल्लाह ताला को वो वहां पे कह रहे हैं सुबहानका, सुबहान अल्लाह और सुबहानका एक ही बात है, पाकी बयान की। दूसरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जहालत का इतराफ किया कि हम जाहिल, हमें नहीं पता, हमें कोई इल्म नहीं है। तीसरी क्या चीज उन्होंने की, सारे इल्म और हिकमत तेरे पास है। तो कितनी आजी उन्होंने दिखाई, उन्होंने ये नहीं किया जैसे हम इंसानों में, कोई हमसे सवाल करता है ना, तो हमें ना आता तो हम क्या करते हैं, तुक्के मारने शुरू हो जाते हैं, अच्छा मेरे ये होगा ये होगा, अच्छा वो भी तो कोई तुक्के मार सकते थे, कुछ भी बोल देते, कुछ कह ही देते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, जो चीज का नहीं पता इंसान कह दे नहीं पता, लेकिन अक्सर हम इंसान शर्माते हैं इस बात से कि हम कैसे कह देंगे मुझे नहीं पता, दूसरा कहेगा अच्छा तुमने तो बड़े कोर्स किए हैं, मैं तो तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं पता, तो नहीं पता कोई बात नहीं। कोई इंसान भी तमाम उलूम का माहिर नहीं हो सकता, और तमाम क्या, एक इल्म का भी माहिर नहीं हो सकता। आप देखें, एक बंदा एक चीज के अंदर कोई एक्सपर्टीज हासिल करता है तो दूसरी चीज उसको नहीं आती, कोई घुटनों का डॉक्टर है तो उसको आंखों का नहीं पता, कोई दिमाग का डॉक्टर है तो उसको पेट का नहीं कुछ इल्म है, यानी आप सोच लेना कि एक इल्म लेने लगते हैं उसमें भी पूरी तरह माहिर नहीं होते, और जिस सब्जेक्ट में भी उन्होंने महारत की होती है उसमें भी फुल इल्म नहीं होता। तो इंसान कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कहें कि हाँ इसके पास कामिल इल्म मौजूद है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। फिर भी हम ये बात कहने में क्यों इतना हिचकिचाते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, क्या ये कहने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, इंसान ये कह दे बजाय इसके कि वो गलत सलत जवाब दे। कुर्तुबी कहते हैं कि ये हमारे सीखने की बात है कि हमसे जब कोई इल्मी सवाल किया जाए और हमें ना आता हो तो हम कह दें ला आलम ला अदरी, ला आलम यानी मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं, ला अदरी मुझे नहीं पता इसका, जैसे फरिश्तों ने कहा, तो फरिश्तों से इस बात को हमें सीखना चाहिए, और इसमें आजी होती है, इसमें किसी की कोई बेइज्जती नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, जब नहीं कोई बात पता होती थी तो आगे से कह देते थे कि अच्छा मैं बता दूंगा। और आज याद है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह कहना भूल गए थे, लेकिन ये नहीं करते थे कि खुद ही बस कुछ ना कुछ बना के इधर से उधर कुछ कह दें। तो जो पहली बात उन्होंने कही फरिश्तों ने, सुबहाना का, हजरत उमर ने हजरत अली और अपने पास बैठे हुए दूसरे असहाब से एक मरतबा सवाल किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को तो हम जानते हैं वो क्या है, लेकिन सुबहान अल्लाह क्या कलिमा है? तो हजरत अली ने जवाब दिया, इस कलमे को अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद किया है, वो इससे खुश होता है और वो इसका कहना उसको महबूब है, यानी उसको बहुत पसंद है कि ये कहा जाए, इसीलिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह की जो ये तस्बीह है ये तो अरे अल्लाह के महबूब कलिमात में से, आपको पता है ना, तो कितना मुख्तसिर से कलिमात है, छोटी सी बात है सुबहान अल्लाह, लेकिन अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंद है और अल्लाह इससे खुश होता है। तो उन्होंने पहले अल्लाह की पाकी बयान की, फिर उसके बाद क्या होता है सुबहान का कहना, मैंने पहले भी आपको तस्बीह में बताया था, यानी अल्लाह ताला को हर कमजोरी, हर ऐब, हर फ्लॉ से पाक समझना कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये हम कह रहे हैं, समझे समझ लें, जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला के अंदर कोई कमजोरी नहीं है, कोई ऐसी चीज जो उसकी शान के खिलाफ हो, जैसे बुढ़ापा है, जैसे कोई कमजोरी है, जैसे बीमारी है, जैसे नींद है, जैसे कोई काम ना कर सकने की हिम्मत वो है, जैसे और कोई भी चीजें लगा दें जो कोई इंसान के साथ लाहक होती हैं, जैसे कोई मजबूरी है, मजबूरी भी एक कमजोरी का नाम है ना, इसी तरह मौत है, ये सब चीजें हैं ना, ये कमजोरियां हैं, ये इंसानों के साथ तो लाहक हो सकती हैं लेकिन अल्लाह इनसे पाक है। ठीक है, या जल्दबाजी में फैसले कर लेना, या ना समझी के फैसले कर देना, या जज्बात में आके कोई काम कर देना, ये सब कमजोरियां हैं। ठीक है, अल्लाह इनसे पाक है, लेकिन लेकिन अब ये बात सुने, जब कोई इंसान अपने मुंह से ये कहे कि ये फैसला, ये बात, ये हुक्म अल्लाह का, ये तो नहीं समझ आता, ये ऐसे क्यों है, जैसे आपने देखा ना फरिश्तों ने सवाल किया, मैंने आपको बताया था सवाल किया, लेकिन उसका उनका सवाल क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं था, अल्लाह को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अल्लाह हमें समझ नहीं आ रही इसकी हिकमत की क्या है, एक मैंने आपको बताया था ना ऐसा सवाल होता है, और एक कैसा सवाल होता है जो हमने पीछे देखा, माजा अराद अल्लाह बिहादा मतलब, क्या अल्लाह का इरादा था ऐसी मिसालें देने का, ये कोई मिसालें देने वाली, एक ये भी सवाल होता है क्या इरादा था अल्लाह का। तो क्रिटिसाइज करने वाली जो बात होती है, जब इंसान ऐसी बातें करता है जिसमें एतराज होते हैं अल्लाह की किसी बात के ऊपर, सवाल नहीं होता बस एतराजात एतराजात, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं उस वक्त, गौर करें, अल्लाह की तस्बीह के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम क्या कह रहे होते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह ताला ने तो ये कोई हिकमत से फैसला नहीं किया, फिर अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, ये वाला जो हुक्म है, यानी अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि 21st सेंचुरी में क्या होना है, या जब हमने ऐसे मुल्कों में रहना है तो वहां पे क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने तो ऐसे ही बस उठा के कोई हुक्म दे दिया, ये तो तस्बीह के खिलाफ है। हम मुंह से सुबहान अल्लाह की तस्बीहां करते रहे, उसके बाद हम जब एतराज करने लगे तो अल्लाह के हुक्मों पे एतराज करें, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अल्लाह ऐसे ही फैसले कर देता है, बस ऐसे ही कुछ भी कह देता है जो उसका दिल चाहता है, या उसने ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला कर दिया, नाउज़ बिल्ला, या उसने कोई हिकमत के बगैर फैसला ये दे दिया, या उसका इल्म इतना नहीं था, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, कि वो उसको पता होता कि आने वाले वक्तों में क्या जरूरियात होंगी, उसको पता ही नहीं था हमारे जमाने के कैसे जमाने के साथ चलना होता है, तो उसने हमें ये हुक्म दे दिया, क्या ये कहना चाहते हैं, ये तो तस्बीह के मुनाफी है, आप अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पता ही नहीं ना, हम सुबहान अल्लाह कह रहे हैं तो हम कह क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, और फिर हम जब एतराज करते हैं तो हम तो उसी सुभान अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, सुभान का पाक है तू, यानी अब ये जो तेरा फैसला है, जो भी तूने इस इंसान को बनाने का और उसको खलीफा बनाने का फरमाया है, तेरा ये हुक्म है या तेरी ये बात है, अल्लाह तू तो हर ऐब से पाक है। अल्लाह इसके अंदर जाहिर है कोई बात ही होगी जो हमें नहीं पता है, अल्लाह तू जानता है। और ये जो चीजों का है ये इल्म हमें नहीं है अल्लाह, तो हमें तो जो तूने सिखा दी, और अल्लाह ने उनको क्या सिखाया था, तस्बीह करनी सिखाई थी, हमें तो यही पता है। तो इंसान को जो शर्फ मिला वो इल्म की वजह से मिला, जो पहला जिसकी जिसके आगे फरिश्ते भी आजिज हो गए। और इन्नका अंतल अलीम उल हकीम, अल्लाह तू तो इल्म वाला और हिकमत वाला है, इल्म तेरे पास है। अब इससे हमें सीख लेना चाहिए कि आगे आगे हम कुराने पाक में जब जाएंगे ना, तो ये हमें बात समझ लेनी चाहिए कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। कोई बात नहीं समझ आ रही तो चाहे 10 साल हमें समझ ना आए, पिछला कोर्स भी कर लिया उससे पिछला, ये बात नहीं मुझे समझ आई तो ना समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन यही कहते रहना है मेरे पास कोई इल्म नहीं, मगर अल्लाह ने जितना सिखा दिया मुझे दे दिया, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास कुछ, मुझे नहीं समझ आ रही तो कोई नहीं, अल्लाह ताला की। लेकिन क्या बात है, हमेशा क्या कहना है, मैंने आपको पिछली उसमें आयत 26 में भी बताया था, उसको हाईलाइट कर ले, आपने कहना है इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिना, ये हक है हमारे रब की तरफ से। जैसे ईमान वालों ने कहा था ना इन अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से उनके पास हक है, तो हमें कहना इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिना, ये हक है बेशक हमारे रब की तरफ से, रब्बिना हमारे रब की तरफ से ये हक है। इस बात को सीख लें, और इस बात को सीख लें कि जो है हमें इल्म नहीं है, जो अल्लाह दे देता है वो कितना इल्म है हमारे पास, कितना इल्म है। अभी अपने आप को हम बहुत बड़े इल्म वाले, कुछ लोग तो इतना अपने आप को माहिर समझते हैं कि वो तो कहते हैं हर सब्जेक्ट का इल्म, हमसे तो कुछ पूछो, हमें तो सब आता है, चाहे वो घरदारी है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल का सवाल पूछ लो, चाहे दीन का सवाल पूछो, दीन के तो सबसे आसान सवाल है, वो तो सबको इतने आसान लगते हैं ना, क्यों, इसलिए कि उसमें तो जो दिल में आता है बोलो, चाहे कोई अलिफ बा भी ना पढ़ी हो, ना कुरान सीखा हो, ना हदीस का कोई इल्म हो, बस सुनी सुनाई बातें इधर से उधर से, चलो ये करके हम मशवरे भी देते हैं, फतवे भी देते हैं, और इस्लाम को ये कहता है, इस्लाम को ही वो कहता है, ये कहने लगते हैं। तो यहां से पता चला ला इल्म लाना, हमारा इल्म, हाँ मैं आपसे सवाल पूछती हूँ हमारा इल्म कितना है, तो याद कर लें कि मूसा और खिजर अलैहि सलाम जब जा रहे थे कश्ती में, तो कश्ती पे आके एक चिड़िया बैठी थी जिसकी चोंच में पानी का कतरा था, तो खिजर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था कि या मूसा मेरा तुम्हारा, हालांकि खिजर अलैहि सलाम का इल्म तो मूसा अलैहि सलाम से भी जुदा गाना, एक डिफरेंट ही इल्म था, मेरा तुम्हारा और जितनी मखलूक है सबका इल्म इस पानी के कतरे की तरह है समुंदर के मुकाबले में, अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में इस हमारा सबका इल्म ऐसे है जैसे ये चिड़िया की चोंच में जो पानी का एक ड्रॉप है। अब उस ड्रॉप को समझ लें कि सब में इतना इल्म तकसीम हुआ, एक मिसाल दी जा रही है ना, अब उसमें हमारे हिस्से में क्या आया होगा, फिर उसके बाद हमारी बातें कैसी हैं, हर एक को जवाब देना, कोई सवाल कर ले सही गलती से, अगर किसी मजलिस में कोई एक बंदा सवाल कर ले ना, 10-20 लोग उसको जवाब दे रहे होते हैं, सब अपना अपना, जैसे आज हमने इसको जवाब दिए बगैर भेजना नहीं है, तो नहीं पता हो तो ला इल्म ना, हमें नहीं पता। तो हमारा इल्म याद रखें, फरिश्तों ने वो जो अपने आप को समझ रहे थे उन्होंने क्या समझा था, अभी मैंने इसीलिए वो हदीस आपके सामने रखी कि फरिश्तों ने सोचा था कि हमसे ज्यादा तो कोई अफजल हो नहीं सकता बुजुर्गी में, और अगर बुजुर्गी में हुआ भी इल्म में तो कोई नहीं हमसे आगे बढ़ सकता, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं, हम इतने अरसे से हैं, हम गैब में की जो खबरें जो इंसान के पास तो हो नहीं सकती, वो तो वहां पे घूमते फिरते हैं, उनके सामने जन्नत है, उनके सामने जहन्नम है, आसमानों की चीजें हैं सब, तो हमसे ज्यादा थोड़ी इसको इल्म हो सकता। तो ये उन्होंने इकरार किया कि नहीं, हमारे पास इल्म नहीं है। दूसरी, ये हमें पता चलता है एक और बात, ये सब सीखने की बातें इन आयात से, तो आप लिखते जाएं इनको कि देखें, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जो हमने बात की थी वो सही नहीं थी। हमने क्या कहा था कि अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह तू ऐसा बना रहा है जो इस फसाद करेगा और खून बहाएगा, तो ये हमारी बात सही नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एजम्पशंस कर लेना है ना, कि किसी की जरा सी चीज देख के और एज्यूम कर लेना ये तो ऐसा ही होगा, सारी की सारी कौम को कह देना ये तो जरूर ऐसे ही होंगे, ये तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये तो चोर होते हैं, ये तो बेईमान होते हैं, ये तो झूठे होते हैं, ये तो फला, किसी के बारे में भी या किसी सारे ही खानदान, पूरे कबीले, पूरे जुबान बोलने वाले या एक किसी रंग वाले, इनके बारे में जनरलाइज करके कोई बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हर जगह में ऐसे भी होंगे तो दूसरी तरह के भी होंगे। फरिश्तों को ये नहीं पता था कि ठीक है उनमें फसाद करने वाले भी होंगे, खून बहाने वाले में, लेकिन उनमें अंबिया भी होंगे, उनमें औलिया भी होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, ये कैसे कैसे लोग उनमें होंगे। तो आज कोई ये देखे तो कहेगा हाँ फरिश्तों ने तो बिल्कुल सही कहा था, दुनिया में तो कितना खून खराबा हो रहा है, वाकई इनकी तो बात सही थी। नहीं, इसलिए कि हमें खून खराबे की ही बातें ज्यादा पता चलती हैं, वही खबरें हाईलाइट होती हैं, वही खबरें हर जगह मीडिया में फैलाई जाती हैं, उनको शोहरत दी जाती है, लेकिन जो भलाई है अक्सर वो छुपी ही रह जाती है, भलाई की बातों को कोई हाईलाइट नहीं करता, उसमें नमक मिर्च नहीं ना होता, तो इसमें तो मजा होता है, चटखारा होता है, अरे पता चला ऐसा हो गया, फलानी जगह में ये हो गया बच्ची के साथ, फलानी जगह में लड़के के साथ ऐसा, इन इनके अंदर जरा ये होता है, इंसान की एक तबीयत होती कि ऐसी बातों को जरा हाईलाइट करे, बड़ी यानी धुआंधार बात होती है, जबकि नेकी की बात ना पता चलती है और छुपी रह जाती है। तो दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं और खैर भी है, तभी दुनिया चल रही है। तो उन्होंने एक बात को पकड़ के और सारी उसकी बातें, ये नहीं देखा कि जो खलीफा होगा अगर उसके पास शर के लिए ताकत होगी और इख्तियार होगा तो खैर का भी तो होगा, तो इससे पता चलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर एक और बात कि जिस बात की हिकमत का पता ना हो ना, अब उनको हिकमत नहीं पता थी कि अल्लाह को पता है ना कि इसकी क्या हिकमत है, अल्लाह ताला ने फरमाया ना इन्नी आलमु मा ला तालम, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है। तो जिस बात की हिकमत का नहीं पता हो, जरूरत नहीं कि हम उस पर एतराज करने लगे, पहले ही कुछ बोलना शुरू कर दें, फिर बाद में रियलाइज हो क्या हो ये तो मैंने सही नहीं कहा था। तो अगर नहीं पता, अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमु, अल्लाह जानता है तुम्हें नहीं पता। यहां पे भी कहा गया इन्नी आलमु मा ला तालमु, यही बात फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाई, वही बात अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं जब कोई हुक्म देते हैं तो उसके बाद फरमाते हैं वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमुन, फिर भी हम इतराज करते हैं। क्या हमें फिर जब कुरान की ये आयात आती हैं तो यकीन नहीं आता? अल्लाह ताला ने हमें कुरान खोलने पे ही फरमा दिया था ला रईबा फी, फिर क्यों शक करते हो? ला रईबा फी जब ये पढ़ लिया और इस पे यकीन कर लिया ना, तो हर आयत पे शरह सदर होना चाहिए, सीना खुल जाना चाहिए इंसान को, उसको आगे बढ़ के लेना चाहिए, नहीं इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, ला रही बफी। बड़े लोग एतराज करते रहते हैं ये जलजला क्यों आ गया, फलां को तलाक क्यों हो गई, फलां को औलाद क्यों नहीं आ रही, फलां के साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हमारे साथ हुआ, वो क्यों हमारे साथ हुआ। उस वक्त ये सोचना चाहिए वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, ठीक है। और ये भी हमें पता चलता है कि गैब का इल्म फरिश्तों के पास भी नहीं है, गैब का इल्म फरिश्ते भी नहीं जानते, वो भी खुद कह रहे हैं, और हम आज समझते हैं जिन्नात को पता है, फरिश्ते तो जिन्नात से ऊपर रहते हैं ना, जिन्नात की तो वहां तक भी रसाई नहीं जहां तक फरिश्तों की है, जिन्नात तो आसमान दुनिया से आगे तो जा ही नहीं सकते, वहां से भी मार भगाए जाते हैं, और फरिश्ते आगे अल्लाह ताला से करीब हैं, मगर उनके पास भी इल्म नहीं है गैब का, और हम जिन्नों से पूछना चाहते हैं, जिन काबू कर लिया वो बताएगा, तो अलीम यानी सब तरह का इल्म रखने वाला, और हिकमत, हिकमत क्या चीज होती है पहले ये भी देख लेना, हकीम है अल्लाह ताला, तो हिकमत क्या होती है? राइट टाइम पर राइट फैसला करना, विजडम जिसको हम कहते हैं। हिकमत ये नहीं कि बस हम खामोश बन के बैठे रहें, ये बड़ी हिकमत है इसके अंदर, वो खामोशी के अंदर चाहे बेवकूफी हो, लेकिन हिकमत ये होती है जस्ट राइट टाइम पे राइट फैसला। मसलन अल्लाह ताला ने शरीयत दी हमें, नमाज का हुक्म दिया, ये राइट फैसला है। अगर हम अल्लाह ताला को अल हकीम मानते हैं ना, तो हम माने कि ये अल्लाह का सही फैसला है बिल्कुल। या हमारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम कहें कि ये सब हिकमत पे मबनी है, तब तो हमने अल्लाह को अल हकीम माना। और अगर अल हकीम, हाँ अल्लाह का ये एक नाम है, और इसकी तस्बीहां पढ़ते रहें और कहें हाँ ना इस अल्लाह की सिफत को मानते, लेकिन सब अल्लाह के फैसलों पे एतराज है, तो क्या माना आपने फिर अल्लाह ताला को अल हकीम? आप तो अपने आप को ही हकीम समझते हैं, मैं तो ये समझती थी हिकमत तो इसके अंदर थी, तो होना तो ऐसे चाहिए था, ये क्या हो गया? तो अल हकीम पहले फैसला कर लेना कि आप खुद हकीम है कि अल्लाह ताला है अल हकीम। अगर अल्लाह के हर फैसले पे इतराज आता है, ये मेरी जिंदगी में फलाने के साथ शादी क्यों हो गई, फलां के साथ होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, वो क्यों हुआ, नहीं समझें कि अल्लाह अल हक अल अलीम भी है और अल हकीम भी है। मैं देख लें फरिश्ते फिर कैसी हम्बल मखलूक है, सीखना चाहिए ये। और देखें उन्होंने ये नहीं किया कि अच्छा हम सोचेंगे हम देखेंगे, फौरन इतराफ किया, फौरन एक्नॉलेज किया कि हमें नहीं पता है, ना शर्माए इस चीज के अंदर, ना झिझके इस चीज में। जब अला इल्म अल अना कहना आसान नहीं ना होता, अना आ जाती है ना बीच में, उन्होंने अपनी अना नहीं दिखाई। यस बेसिकली तो यही कहना था ना कि अल्लाह हमें कुछ नहीं पता, ये कहना था ना, तो ये आसान होता है कहना। और हमें ये भी पता चलता है कि इल्ला मा अल्लमतना, जो सिखाया तूने, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ही सिखाता है, इसीलिए हमें दुआ अल्लाह से करनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें सिखा दे, अल्लाह इल्म दे दे, क्योंकि तो तू ही इल्म दे सकता है, जो तू सिखाएगा बस वो ही आएगा हमें। जब अल्लाह ताला खुद भी तो इनको बता सकते थे सारे नाम के ये हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काल या आदम अम्बिहुम बि अस्माएहिम, ए आदम इनको इन चीजों के नाम बताओ। वही वाली चीजें हैं ना जो मैंने आपको बताया, बाज कहते हैं कि इंसानों के थे नाम सारे, और वो बाज कहते हैं कि नहीं दूसरी और भी चीजें थी, बाहर कैफ जो भी जितनी चीजें थी सबके नाम सिखा दिए थे ना। तो एक, हाँ मैं आपको ये बता रही थी, एक चीज थी ना कि अल्लाह ताला ने उन चीजों को सामने आदम अलैहिस्सलाम के किया और फिर सिखाया, हो ये भी हो सकता है अल्लाह ने दिल में डाल दिया हो उनको उनके सारे चीजों के नाम। आप देख लेना मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहली बात आदम अलैहिस्सलाम ने क्या की थी, सबसे फर्स्ट थिंग जो ही सेड जब अल्लाह ताला ने उनको बनाया, कि जब उनकी रूह उनकी नाक में डाली गई तो उनको छींक आ गई, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने सिखाया था ना उनको, तो इल्म अल्लाह की तरफ से मिलता है, अर्रहमान अल्लमल इंसान, अल्लाह सिखाता है। इल्म के लिए दुआ भी सिखाई गई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है कि मेरे से मांगो इल्म, मसनून दुआ भी है इल्म नाफे के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियान, अल्लाह नाफे इल्म मुझे सिखा, तो ये तो मसनून दुआ भी है, कुरानी दुआएं भी इस पे है। तो इसलिए हमें भी अपने लिए ये चीज, ये ही नहीं कहते रहना चाहिए मुझे आता नहीं है, मेरा हाफ़ज़ा कमजोर है, अल्लाह से मांगा करें ना, कितनी दफा दुआ करते हैं ये, अगर नहीं आ रहा या नहीं हो पा रहा आपसे, तो आप मुझे बताएं दिन में कितनी दफा दुआ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कितनी दफा कहते हैं, ये भूल जाते हैं ना ये दुआ करना, फिर कैसे आएगा? इस दुआ को अपना वजीफा बना लें, अल्लाह सिखा देगा आपको भी, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने अब ये फरिश्तों को दिखाना था ना कि देखो ये जो तुम कहते हैं ना ये खून बहाएगा ये फसाद करेगा, तो देखो ये जो इसकी फजीलत है ये देखो तुम, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से जब फरमाया कि बताओ इनके नाम, फलम्मा अम्बा हम भी अस्माएं, फिर जब उसने बता दिए नाम उनके, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजें क्लियर कर दी, सब नाम बता दिए। ये तो अब पता चलता है ना, इस इल्म की वजह से वो खिलाफत के अहल हुए, ये इल्म था। आज देखो इल्म की कोई कदर ही नहीं है, सारे सलाम है तो बस ये पैसे को, कि पैसा किसी के पास है चाहे उसको कोई इल्म हो, और इल्म सिर्फ नाम क्या रह गया, डिग्रियों का नाम। चाहे अकल उसको कुछ समझ हो ना, उसके पास ये डिग्री मेरे पास इल्म आ गया। इल्म शऊर का नाम है, इल्म हिकमतें आने का नाम है। क्या इल्म के लिए इंसान को हरीस होना चाहिए कि मुझे और इल्म मिले। हम कहते हैं मुझे लेके मिलेगा क्या, कितने की नौकरी मिलेगी इस ये इल्म लेने से। अच्छा और ये वाला लूं तो फिर कितने की मिलेगी, और फलाना वाला लूं तो कितने की मिलेगी। यानी हमारे लिए इल्म क्या रह गया, वो भी इसीलिए लेते हैं कि बस पैसा कमाया जाए। ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या है, इल्म है, मैं बड़ा इल्म ले रही हूँ। क्या इल्म ले रहे हैं, सारा दिन फोन के ऊपर वो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो देखते जाएंगे, ये हम इल्म ले रहे हैं। फेसबुक पे वीडियो देखते जाएंगे, ये इल्म आ रहा है। ये इल्म थोड़ी, ये तो इल्म के सोर्सेज थोड़ी है। किसी ने कहा क्यू टीवी में देखती रहती हूँ, चलो मैंने मुझे क्लासें लेने की क्या जरूरत है, मैं बस वो टीवी देखती रहती हूँ। ये इल्म के सोर्सेज थोड़ी है, कोई वीडियो उठा के बना के झूठी सच्ची जहां से मर्जी किसी तरह भी वायरल कर देता है, बस उसको समझते हैं ये इल्म है। ये इल्म नहीं है, सबसे बेसिक और जो रूट है वो है ये कुरान। पहले भी आपको कुरान करीम की फजीलत में बताया था कि इस कुरान का इल्म कैसा है बाकी उलूम के मुकाबले में, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि आदम अलैहिस्सलाम खिलाफत के अहल हैं। काला फरमाया अल्लाह ताला ने, ये काला किस तरफ है, उसने फरमाया किस तरफ जा रही जमीन, उसने अल्लाह ताला ने, अलम क्या नहीं, अकुल लकुम, अकुल मैंने कहा, लकुम तुम्हारे से, इन्नी आलमु गैब अस्समावाति वल अर्द, कि मैं जानता हूं गैब आसमानों का भी और जमीन का भी। मुझे पता है ना आसमानों के भी गैब और जमीन के भी गैब, और वाकई अल्लाह ही को पता था ना कि आगे क्या होना है, आगे इस इंसान ने क्या क्या करना है, और ये कैसी मखलूक है जो कि फरिश्ते नहीं जानते थे। वो आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं ये भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। क्या छुपाया था फरिश्तों ने, जाहिर तो जो किया वो आपके सामने आ गया इस आयत 30 में, लेकिन छुपाया क्या था। एक तो वो बात मैंने जो आपको बताई कि आपस में उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा तो वैसे वो इल्म वाला नहीं हो सकता। दूसरा, उन्हीं के अंदर इबलीस भी था, और इबलीस दिल में तकब्बुर छुपाए हुए था। और उस इसके बारे में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो वो उसने कहा था कि ये कोई चीज नहीं, अगर इस पे मुझे मुसल्लत किया गया मैं तो उसको बर्बाद करके छोड़ दूंगा। हाँ, तो वो, और फिर जो उसके दिल के अंदर हसद पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से, वो भी अल्लाह ताला जानता था। और किबर अगर उसके दिल में जो था वो भी अल्लाह ही को पता था, वो सब चीजें छुपी हुई थी, वो कोई जानता नहीं था। अभी हकीकत खुलेगी ना, अल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला इंसान की हकीकत को खोल के रख देता है। ये जब उसके दिल में कोई चीज छुपी होती है वो किसी दिन सामने आ ही जाती है, और ये बहुत डरा देने वाली है। तख्तुमून, जो भी हमारे दिलों में दिमागों में चल रहा होता है समझ लेना चाहिए, जो तुम छुपाते हो वो सब अल्लाह ताला को मालूम है, उससे छुपा हुआ नहीं है। और कुन तुम पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी छुपाते रहे हो, पीछे भी जितना भी इबलीस ने जो भी इसके दिल के अंदर था, जो किबर था, वो कोई फरिश्ता भी नहीं जानता था। वो तो अपनी तौर पे तो वो नेकों में ही था ना, ये वो भी फरिश्तों के बीच में रहता था, लेकिन उसके अंदर कितना फसाद था वो अल्लाह ताला को पता था। तो जो तुम छुपाते हो, जो तुम जानते हो, अच्छा ये बातें हो गई। फिर ये भी अल्लाह ताला को पता था कि ये कितना फसाद करेगा आगे जाके। तुम ये सोचते हो ना, ये इंसान फसाद करेगा, ये खून बहाएगा, और ये जो तुम्हारी सफों के अंदर छुप के बैठा हुआ है, ये कितना फसाद करेगा, और ये कितना शर वाला है। देखिए उसको शर कितना है कि कियामत तक नहीं खत्म होने वाला, वो कभी तौबा नहीं करेगा। उसका शर इतना है कि वो थकता नहीं है कि इंसानों को भटका भटका के, और आखिर वक्त तक गिव अप नहीं करता, गुमराह करता रहता है। कितना शर है उसके अंदर। तो वो फरिश्ते कह रहे थे ये इंसान शरीर होगा, इंसान का शर क्या, ये तो जो तुम्हारे बीच में छुप के बैठा है इसका शर कितना। ठीक है, तो ये तुम जो छुपाते हो वो भी अल्लाह को पता है।